यहाँ से अब सूरत मोमिन के एंड और सूरह हामीम सजदा के रब्त को देखिएगा। मोमिन में मुतकब्बिर और जालिम फिरौन की हलाकत की बात हुई। हामीम सजदा जब शुरू होने लगी है, इसमें आद और समूद की हलाकत की बात है। इन दोनों को अल्लाह का दुश्मन कहा गया, जबकि इसी सूरत में औलिया अल्लाह को जन्नत की खुशखबरियाँ दी जाएंगी। और सूरत हामीम सजदा 46 आयतें हैं टोटल इस बारे में इसकी, बाकी आगे हम पढ़ेंगे। और 41 नंबर की सूरह। इस सूरत का नज़ूल सन 6 से 10 नबवी के बीच में हुआ। ये वही दौर था जिसमें बहुत जुल्म व सितम था। हज़रत हमजा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के इस्लाम कबूल करने के दरमियानी दौर में, और बास कहते हैं कि ज़ुलहज 6 नबवी में इसकी आयात नाजिल हुई। हवामीम के सिलसिले की दूसरी सूरत है, यानी इससे पहले एक सूरत गुजरी, ये अब दूसरी है। इसका मरकज़ी मज़मून इस्तकामत है। बड़ी फेमस आयत आने वाली है पारे के एंड के करीब इंशाल्लाह। जब अल्लाह के रास्ते में डट जाओगे फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, ठुकोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ औरों को भी खड़ा कर देगा। कच्ची चीज़ के ऊपर कोई अपनी चीज़ नहीं रखता। ये मेज़ अगर हिल रहा होगा ना तो मैं इस पर कभी अपना लैपटॉप नहीं रखूँगी। कच्चे पक्के लोगों से अल्लाह दीन का काम नहीं लेता। वो कहता फारिग हो जाओ, रुख्सत, अच्छा सा उनको रुख्सत कर दो, दे दिला के सर्री हो गुन्ना। लेकिन हकीकत ये है कि जमे हुए ठुके हुए लोग वही अल्लाह के दीन के काम के होते हैं। नाजुक अंदाम, सहल पसंद, सेल्फ सेंटर्ड, अपनी बीमारियां, अपनी मजबूरियां, अपने बच्चे, अपने ससुराल, अपने माल कमाने के मसाइल को सामने रखने वाले कमज़ोर ईमान के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते जिसको आप सब कुछ कह सकते हैं। इसीलिए इस सूरत को सुनते वक्त मैंने तो अपने लिए दुआ पहले की हुई है, आपको भी कहूँगी कि दुआ करें कि रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रम वसब्बित अक़दामना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फिर बाकी बातें जहाँ आते आएंगी वहाँ देखेंगे। इस सूरत का एक और नाम है फ़ुस्सिलत, खोल खोल कर बयान कर। ये लफ्ज़ देखिए, फ़ुस्सिलत, फ़स्सल युफ़स्सिलु, अनटाई करना, गिरें खुलती जाएंगी खुलती जाएंगी, और अल्लाह करे आज हमारी खुल जाएँ। आयत 3 और 44 में ये लफ्ज़ भी आया है। और अल्लाह ताला की रबूबियत को तस्लीम करके इस पर डट जाओ, तौहीद साबित करने के लिए सूरत में तारीखी, आसमानी और नफसानी सारे दलाइल मौजूद हैं। आद और समूद की तरह तकब्बुर को छोड़ दो, वरना आद और समूद की तरह हलाकत होगी जिनको अल्लाह ने एक निशानी बना दिया था। तकब्बुर के रवैयों को छोड़ने की दावत है। और ख़ास तौर में आयत 15 में मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हम बहुत ताकत वाले हैं, सुपर पावर्स, वी आर सुपर सोल पावर, ये नारा लगाया था कौम ने आयत 15 में, गौर से सुनिएगा। तो कौम आद और समूद की हलाकत की मिसालें देकर अल्लाह ने दुश्मनों का बुरा अंजाम दिखाया है कि किस तरीके से ये अल्लाह के नबियों के रास्ते में रुकावट बने। अल्लाह ने इन्हीं को निकाल दिया। ईमान लाकर सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा करने से ही दुनिया और आखरत की हर नेमत मिलेगी। और अल्लाह की रबूबियत को तस्लीम करके इस पर डट जाओ। कुरान पाक का तस्करा 4 बार है इस सूरत में। अल्लाह के दुश्मनों को कुरान के दुश्मन करार दिया, और कुरान के दुश्मनों को अल्लाह का दुश्मन करार दिया। और हाथों पाँव की गवाहियों की बात है, क़यामत के दिन तुम्हारे जिस्म ने तुम्हारे खिलाफ गवाहियाँ देनी है। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत 1 से 8, मुनकरीन की हट धर्मी। और रुकू नंबर 1 है हामीम, तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम, ये उतारी हुई है बड़े मेहरबान बहुत रहम वाले की तरफ से, ऐसी किताब जिसकी आयतों की वाज़ह तफसील की गई है, इस हाल में कि कुरान अरबी ज़ुबान में है, इस कौम के लिए जो जानती है, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला। फिर भी इनकी अक्सरियत ने मुंह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं, और उन्होंने कहा कि तू जिस चीज़ की तरफ हमें बुला रहा है, हमारे दिल तो इससे पर्दे में है और हमारे कानों में बोझ है, और हम में और तुझ में एक हिजाब है, तेरी और हमारी तो वेवलेंथ ही नहीं मिलती। आज भी लोग ये कहते हैं इन मौलवियों को नहीं हमारी बात समझ आती और इनकी बात हमें कोई नहीं समझ आती। चलिए, आपको इतना ही ग्रज गुस्सा इस्लाम से, मोमिनों से, ईमान वालों से तो कह लीजिए, वहाँ भी यही बात दिख रही है। बल्कि इससे भी बढ़कर क्या कहते हैं, हमें तो तेरी बात ही नहीं समझ आती और हमारे दिल तो पर्दे में भी हैं और हमारे और तुम्हारे बीच में एक हिजाब है। अच्छा, तो अब अपना काम किए जा, हम भी यकीनन काम करने वाले हैं। इसको कहते हैं स्टबन एटीट्यूड, ढीठपना। मुंह हमारी जब कोई करे तो फिर उसको अल्लाह हिदायत क्यों दे? आप कह दीजिए कि मैं तुम्ही जैसा इंसान हूँ, मुझ पर वही नाजिल की जाती है और तुम सब का माबूद एक अल्लाह ही है, सो तुम इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ और इससे गुनाहों की माफ़ी चाहो। और इन मशरिकों के लिए बड़ी ही खराबी है जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के भी मुनकर ही रहते हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए भले काम करें, इनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है। अल्लाह हमें ऐसा अजर देने वाले काम करने की तौफीक दे। अब आमीन कहिए। अजर पे तो हम आमीन कहते हैं, आप कोशिशों पे आमीन कहिए। ईमान से मुतल्लिक एकायत फुस्सिलत 8। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम अजरुन गैरु ममनून। मोमिन के लिए अजर अनलिमिटेड। आप इसको आजमाना चाहें ना तो आप एक मिरर खोलें और उसके सामने एक और मिरर रखें, तो वो मिरर का एक लंबा सा सिलसिला चलेगा। एक लैपटॉप आप 100 स्क्रीनों के साथ लगा लें तो वो 100 बन जाती हैं। आजकल ये कोई बड़ी बात नहीं। इसी वक्त रूम में मेरा ला 6 स्क्रीन है तो मैं देख रही हूँ, और आप सब ने भी शायद कुछ ना कुछ खोला ही होगा। ऐसा अजर मिले कि ख़त्म ना हो, हम जाएँ तो हमारे बाद हमारे अजर वाले दूसरे आ जाएँ, फिर वो जाएँ तो वो जाएँ। ज़रा सोचिए अल्लाह के नबी के अजर का सिलसिला, अबू हुरैरा का अजर, हज़रत आयशा का अजर, इल्मी शख्सियात की बात कर रही हूँ, आइमा किराम का अजर, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का अजर, इमाम मालिक से लेकर इमाम बुखारी का अजर। करके काम मेहनत करके चले गए तो हम भी कुछ कर जाएंगे, तो शायद हमारे लिए कुछ इज्जत का जरिया बन जाए। फेथ इन एक्शन कह के हर किस्म के तासुब से पाक होकर कुरान सुनना, कुरान को खुले दिल से सुनना समझना और इस पे अमल करना, और कोई ऐसी मनफी सोच दिल दिमाग में नहीं लानी कि जिसकी वजह से ये कुरान का सिलसिला बंद हो जाए। आगे है रुकू नंबर 2:9-18। आसमान और ज़मीन अल्लाह की इताअत गुजार हैं, तुम क्या कहते हो? क्या कहना है हमें? इंशाल्लाह मैं भी अल्लाह की इताअत करूँगी। قُلْ أَيْنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ। आप कह दीजिए कि क्या तुम इस अल्लाह का इनकार करते हो और तुम इसके शरीक मुकरर करते हो जिसने दो दिन में ज़मीन पैदा कर दी? सारे जहानों का परवरदिगार वही है, और इसने ज़मीन में इसके ऊपर पहाड़ गाड़ दिए और इसमें बरकत रख दी सिर्फ 4 दिन में। अब ये देखिएगा ज़रा ब्रेक डाउन है, 6 दिन में जो दुनिया बनी किस दिन क्या बना? ये बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, पॉइंट शेयर कर सकते हैं आप उनके साथ। सिर्फ 4 दिन में ये हुआ, ज़रूरतमंदों के लिए यकसा तौर पर। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वह धुआं सा था, फिर इसे और ज़मीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या ना खुशी से। दोनों ने अर्ज़ किया हम बखुशी हाजिर हैं। अल्लाह हमें भी खुशी खुशी आने वालों में शामिल करे नेकियों के लिए। बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में इसके मुनासिब अहकाम की वही भेज दी, और हमने आसमान दुनिया को चिरागों से जीनत दी, और निगेबानी की ये तदबीर अल्लाह गालिब व दाना की है। अब अगर ये मुंह फेरें तो कह दीजिए कि मैं तुम्हें इस कड़क यानी आज़ाब आसमानी से डराता हूँ जो मिसल आदियों और समूदियों की कड़क के होगी। अल्लाह अकबर कबीरा, सोचिए ज़रा। उनके पास उनके पैगंबर जो उनके आगे से पीछे से आए कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्तों को भेज देता, हम तो तुम्हारी रिसालत के बिल्कुल मुनकिर हैं। अब कौम आद ने तो बेवजह ज़मीन में सरकशी की, यानी उनको हक तो नहीं था बड़ा बनने का, लेकिन वो बड़ा बनने की कोशिशों में पड़े रहे और कहने लगे हम से ज़्यादा ज़ोरावर कौन है। यह है तकब्बुर वाला जुमला। क्या इन्हें ये नज़र ना आया कि जिसने इन्हें पैदा किया और वो इनसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोरावर है? वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। बिलाखिर हमने इन पर एक तुंद तेज़ आंधी मनहूस दिनों में भेज दी कि इन्हें दुनियावी ज़िंदगी में ज़िल्लत के अजाब का मज़ा चखा दें, और यकीन मानो कि आखरत का अजाब इससे बहुत ज़्यादा रुसवाई वाला है और वो मदद नहीं किए जाएंगे। गुस्सा नहीं आ रहा इस कौम पे? गुस्से से ज्यादा रहम आना चाहिए। इन्होंने अपना बुरा खुद चाहा, रहे कौम समूद सो हमने भी इनकी रहबरी की, फिर भी उन्होंने हिदायत पर अंधेपन को तरजीह दी। इस आयत को नोट करिए और अल्लाह से दुआ करें हिदायत मिलने के बाद हम में से कोई गुमराही को कबूल ना करे। जिस बिना पर इन्हें जिल्लत के अजाब की कड़क ने इनके करतूतों के बायस पकड़ लिया, और हाँ, ईमान वाले और नेक लोगों को हमने बाल बाल बचा लिया। अल्लाह हमें भी बाल बाल ही बचा ले, हमारे बाल बच्चों को भी बचा ले। एक आयत है ईमान से मतलब 18, वनजैनल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तजलून लहू अंदादन आयत 9 में देखिए, और खुदा बना के फिरते हो तुम्हारे और हैं देखने करने वाले। आज हम खालिक से दूर और उसकी मखलूक से करीब हैं। आज बड़े बड़े कैमरे बन गए, हमने खला में जाकर झांक भी लिया। हिबल कैमरे ने वो तस्वीरें भी दे दी कि जिसको देखकर इंसान दंग रह जाता है, लेकिन खालिक तक नहीं पहुंचता। ये कुरान आपको सिखाता है दुनिया की तरक्की करो और तरक्की के साथ खालिक तक पहुंचो। तदब्बुर और गौर और मार्फत के जरिए ये होगा। इसलिए फेथ इन एक्शन क्या है कि कायनात में फैली अल्लाह की निशानियों को देखकर रब्बे कायनात की अजमत को पहचानना और कायनात पे गौर व फिक्र करना। फिर को नंबर 3 है आयत नंबर 19 से 25। अब यहाँ से आगे पारे के एंड तक जो हिस्सा है ना, यकीन करें कि इसको सर के कानों से ज्यादा दिल के कानों से सुनने की जरूरत है। आइए सुनते हैं। وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोजख की तरफ लाए जाएंगे और इन सब को जमा कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जब बिल्कुल जहन्नुम के पास पहुंच जाएंगे, इन पर इनके कान और इनकी आंखें और इनकी खालें इनके आमाल की गवाही देंगी। ये अपनी खालों से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ शहादत क्यों दी? वो जवाब देंगी, हमें इस अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई, जिसने हर चीज को बोलने की ताकत बख्शी है। इसी ने तुम्हें अव्वल मर्तबा पैदा किया, यानी जुबान भी तो उसी के हुक्म से बोलती थी, आज अगर हाथ और पाँव बोल पड़े तो क्या हुआ? और इसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। और तुम अपनी बदामालियां इस वजह से पोशीदा रखते ही न थे कि तुम पर तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी खालें गवाही देंगी। हाँ, तुम ये समझते रहे कि तुम जो कुछ कर रहे थे इसमें से बहुत से आमाल से अल्लाह बेखबर है, यानी कैमरा बंद कर दो, खत्म, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह भी नहीं देखता। तुम्हारी इस बदगुमानी ने जो तुमने अपने रब से कर रखी थी तुम्हें हलाक कर दिया, और बिलाखिर तुम नुकसान पाने वालों में से हो गए। अब अगर ये सब्र करें तो भी इनका ठिकाना जहन्नम है। ये क्या हुआ? आपने तो कहा था सब्र का बदला जन्नत। सब्र टाइम बाउंड चेक था, एक्सपायरेशन की डेट गुजर गई। और अगर ये माफी के ख्वास्तगार हो तो वो माफी भी नहीं दिए जाएंगे, यानी एक बराबर रो लो। आपको बच्चे पे जब बहुत गुस्सा आता है आप कहते हैं बैठ के वहां रो लो, जितना रोना है रो लो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। और हमने इनके कुछ हम नशीन मुकर्रर कर रखे थे, जिन्होंने इनके अगले पिछले अमाल इनकी निगाहों में खूबसूरत बना रखे थे। आज ही ढूंढिए उस इंसान को जो गुनाहों को खूबसूरत बना के आपको पेश करता और भेजता। और इनके हक में भी अल्लाह का कौल इन उम्मतों के साथ पूरा हुआ जो इनसे पहले जिन और इंसानों की गुजर चुकी हैं, यकीनन वो नुकसान पाने वाले साबित हुए। क्या जहन में आ रहा है, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, क्या किया जाए? पाँव की ठोकरों से रगे देंगे, ठुड्डे मारेंगे ऐसे लोगों को वो लोग। हमारे अमल के पॉइंट क़यामत के दिन हमारे अज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए आज से ही इनका दुरुस्त इस्तेमाल करना सीखना है, अपने अमाल पे गौर करना है और बुरे अमाल को छोड़ देना है। जिंदगी में जो गलतियां हुई और हो चुकी इन पर अल्लाह तआला से माफी मांग लेनी है। और अगली आयतों में बात और खुलकर सामने आ रही है। रुकू नंबर 4 26 से 32, कुल तालीमाते दीनी का खुलासा इस्तकामत, और साथ ही एक जम लिख लें, इस्तकामत में क़यामत है। चलिए, वकाल लजीना कफरू ला तस्मउ लिहाज़ल कुरआन, और कुफार ने कहा इस कुरान को सुनो ही नहीं, एक जुमला, और दूसरा और इस कुरान की सुनो ही मत। कुरान तो सुन रहे हो पर इसकी ना सुनो, यानी मानो नहीं, अमल नहीं करो, इसके पढ़े जाने के वक्त और बेहुदा गोई करो, क्या जब कि तुम गालिबाज हो। बस यकीनन हम इन कुफार को सख्त अजाब का मजा चखाएंगे और इन्हें इनके बदतरीन आमाल का बदला जरूर देंगे। अल्लाह के दुश्मनों की सजा यही दोजख की आग है जिसमें इनका हमेशगी का घर है, ये बदला है हमारी आयतों से इनकार करने का। और काफिर लोग कहेंगे, हमारे रब हमें जिन्नों इंसानों के वो दोनों फरीक तो दिखा। अब जरा गुस्से को फील करिएगा, हमें वो इंसान और वो जिन्नात तो दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया था, ताकि आज हम इन्हें कदमों तले डाल दें, ताकि वो जहन्नुम में सबसे नीचे सख्त अजाब में हो जाए। जब बंदे का किसी पे बस नहीं चलता ना, तो उसको ठोकरे मारते हैं, ठुड्डे, या वही लफ्ज है अरबी में। वाकई जिन लोगों ने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर इसी पे कायम रहे, इनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम ना करो, बल्कि इस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिए गए हो। तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में भी हम तुम्हारे रफीक थे और आखिरत में भी रहेंगे। जिस चीज को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो, वो सब तुम्हारे लिए जन्नत में मौजूद है। गफूर रहीम माबूद की तरफ से ये सब कुछ बतौरे मेहमानी के है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ये है फरिश्तों की दोस्ती उन लोगों के लिए जिनको उनके दुनियावी दोस्त छोड़ने लगते हैं। हकीकत है कि फ़तूबा लिल्ग़ुरबा, अब अल्लाह की तरफ आते हैं ना, एक वक्त आता है आप अपने घर वालों में अजनबी हो जाते हैं, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश हो जाते हैं। ऐसे वक्त में नायतों को जहन में रखिएगा, क्या आपका रब आपको फरिश्तों की दोस्ती देगा? बेटर है कि बुरी है? फरिश्ते, तसल्लियाँ और खुलासे। और आप देखिए कि असल चीज इस्तकामत है। अगर आपको पूरे पारे का खुलासा दे दो ना, सबसे पहले बंदा अल्लाह को पहचानता है, यानी अल्लाह की मार्फत पहला दर्जा, फिर उस मार्फत का इजहार अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सेकेंड फेज होता है। थर्ड फेज क्या होता है कि इस पे जम जाना। इंसानों की अक्सरियत रब को नहीं मानती, मार्फत के दर्जे पे फेल, एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है, दहरिये हैं। उससे ऊपर उठते हैं तो कुछ जुबान से कलमा पढ़ते हैं, ये मुसलमान होने वाले, इस्लाम कबूल करने वाले हर दौर के, लेकिन कुछ यहीं स्टॉप साइन की तरह रुके हुए हैं। स्टॉप, वो कभी कहते थे चलते स्टॉप, बच्चा वही रुक जाता था। कुछ ईमान वाले जुबान से कलमा पढ़कर स्टॉप पे खड़े हो जाते हैं, वो लोगों को देख रहे, वो क्या कह रहे, इजाजत ही नहीं मिल रही, कोई एनओसी नहीं मिल रहा, वो खड़े हैं खड़े हैं, चुप कर अपना ईमान छुपा, ये छुपा लेते हैं, नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे। उससे थर्ड पेज पे आप मेरी तीसरी उंगली को देख रहे हैं, तीसरा दर्जा है कि नहीं, अब इजहार भी करो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इजहार करके फिर कहीं इधर ही खड़े हैं, इसी सीढ़ी पे खड़े हैं, रश बराबर सीढ़ियों में, लोग ऊपर ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या बात है, ऊपर से तो हॉल भर गए, सीढ़ियों तक लोग हैं, आने वालों का रास्ता रोक रहे हैं, वो मुसलमान जो सिर्फ कालू रब्बुन अल्लाह कह के रुके हुए, उसके तकाजे नहीं पूरे करते। फोर्थ स्टेप है कि जो कह दिए अब करके दिखाना है, ये वही है जो दुखुल फिस सिल्मी काफ़ है, यहाँ उनकी बात है। और जितना इसमें जमते जाएंगे उतनी खैर मिलती जाएगी। फितरत का सुलह, बच्चा कितने दर्दों में से निकल कर दुनिया में आता है, बच्चे दरख्तों पे उग सकते थे, कदर ही ना होती उनकी। एक बंदे को तितली के प्यूपा पे रहम आया, जो अंडे का छिलका तोड़ के उसमें से निकलने की कोशिशें कर रहा था, और ये काफी देर से उसको देख रहा था। इसने कहा कि ये बेचारा इतनी मुश्किल से निकल रहा है, लाओ मैं इसके छिलके को तोड़ दूं। उसने उस छिलके को तोड़ा तो वो बच्चा बाहर आ गया। अब ये मुंतजर है कि अभी थोड़ी देर में ये उड़े और पर फड़फड़ाए, पता क्या चला कि वो तितली का बच्चा हैंडीकैप हो गया। वो जो अंडे के छिलके से वो निकल रहा था ना नुचड़ नुचड़ के, तो उसके अंदर जो जेल था, म्यूकस था ना, वो नुचड़ नुचड़ के उस छिलके में रहता, और एंड पे उसके पर झड़ जाने थे और उसने उड़ जाना था। इन मुश्किलों से घबराइए नहीं, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा के औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आज इस्तकामत की तस्वीर बने खड़े हैं ना गजा वाले, अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब है। अल्लाह इन्ना नसरुल्लाहि फतन करीब, अल्लाह ईद से पहले दिखा दे। अल्लाह वो जो बदर की खुशखबरी दिखाई थी ना, कि दो ईदें इकट्ठी हो गई थी, अल्लाह इस साल उम्मत मुस्लिमा को गजा की खुशखबरियां दिखाए, क्योंकि अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़ नबदा, 100 मुसलमान मुल्कों के नामों को लिस्टों से निकाल दें, एक अल्लाह पे नजरें लगा कर देखें और अपना मुहासबा करके देखें, जो आप कर सकते हैं जो मैं कर सकती हूँ उससे बढ़कर करें, और दूसरा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा उनको फतवे देने छोड़ दें। फेथ इन एक्शन क्या है? दीन को शौरी तौर पर अपनाने के बाद हर हुक्म पर मजबूती से जमना, सच्चे मोमिन की तरह अल्लाह के हर हुक्म की मुकम्मल ताबेदारी करनी है, जिंदगी में हर काम को अपनी सलाहियत के मुताबिक आसन दर्जे पे करना है। ये आसन दर्जे को हाईलाइट कर लीजिए। चल चलाओ वाले काम अल्लाह के दीन के साथ नहीं चलते। चंद दिन में खत्म हो जाती हैं वो चीजें जो लो स्टैंडर्ड की होती हैं। जो काम करें रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करें, आजजी के साथ करें, ऑनर समझ कर करें, अपने ऊपर एक अल्लाह का तोहफा समझ कर करें। अगर पाँव पटक पटक के कोई नेकी करनी है तो उसको यहीं से छोड़ दें, क्योंकि उसमें बरकत नहीं होगी। अब अगला रुको इससे भी खूबसूरत है, 33 से 44 को, नंबर 5, सबर के आला मुकामात। और मैं कह सकती हूँ कि अगर किसी एक कुरान के मजमुए में आप अपने आप को फिट कर सकें, और मैं भी, तो इसमें कर लीजिए, इसकी अमली तस्वीर बन जाए। लोगों ने इंट्रो के लफ्ज जो वेबसाइट पर डाले ना, उसमें यह आयत लिख दी अपने गुमान के मुताबिक, लेकिन मेरी तो अल्लाह से ये दुआएं हैं कि अल्लाह हमें इस आयत के और इसे अगली आयत के मिसल बना दे। क्या, आइए सुनिए। वमन अहसनु कौला मिम्मन दआ इलल्लाह, और इससे ज्यादा अच्छी बात वाला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। गवाही देते हैं कि इस पूरे सफर में आपको हर दिन इस कुरान के जरिए अल्लाह की तरफ बुलाया। जवाब दीजिए, सिर्फ अल्लाह की बड़ाई की बातें की, किसी का नाम लिया, अल्लाह रसूल के नाम और सहाबा के कुछ तस्करों के सिवा, किसी इंसान का नाम, किसी उस्ताद का नाम, किसी मदरसे का नाम, किसी फिक का नाम, किसी इमाम का नाम, किसी मुहदिस का नाम, बस मन अहसन कौल मिम्मन दआ इलल्लाह। जिंदगी का खुलासा बना ले लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। कुरान पढ़ाती हूँ ना इस वक्त, तो ये तो अल्लाह का कलाम है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह की बात के जरिए अल्लाह का कुर्ब। और रात को चूंकि बातें बबल हो रही होती हैं, ज्यादा उसमें कोई लिखी हुई बातें नहीं होती, मनाजात का अंदाज है ना, तो मैं उस वक्त अल्लाह से एक दुआ करके बैठती हूँ रोज, कि अल्लाह मेरी जुबान से कोई ऐसी बात ना निकलवाना कि जो तेरे हक तेरी शान के मुताबिक ना हो। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, लेकिन आज से अपनी जिंदगी का ये मिशन बनाए, लोगों को अल्लाह से जोड़ना है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, नॉन मुस्लिम को इस्लाम की तरफ और मुस्लिम्स को कुरान की तरफ बुलाना है, उनको इस्लाम से जोड़ना है, अपनों को कुरान से जोड़ना है। और दूसरा स्टेप क्या है, और नेक काम करें। ये नहीं कि दूसरों को बुला के वो छोड़ दिया, लो जी कुरान पढ़ाऊं भी मैं और अमल भी मैं करूं, नहीं। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह पहला मरहला है, वामिला सालेहन फेथ इन एक्शन पहले अपने अंदर झलके, और तीसरी चीज जिसकी इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के उलमा को जरूरत है, क्या वकाल इन्नानी मिनल मुस्लिमीन, यकीनन मैं मुसलमानों में से। यहाँ पे थिड़क जाते हैं, लफ्ज मुसलमान पे राजी नहीं होते, कोई ना कोई नाम आगे लगाते हैं, हालांकि वह सम्माकुम उल मुस्लिमीन, सूरत हज की आखिरी आयत है। इब्राहिम का दीन इस्लाम था, आज हमारा भी इस्लाम है, हमारे प्यारे रसूल का दीन भी इस्लाम था, सबके लाके उतार दीजिए। ये लफ्ज यहूदी और नसरानी फिरका वारियत का नाम है, अल्लाह ने इनको भी इनके नबी के दौर में मुस्लिम ही कहा था, इन्होंने अपने लिए इस्लाम के लफ्ज को काफी ना समझा और नाम डाले। आज उम्मत मुस्लिमा में कितने नाम दिखते हैं, सबके साथ इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ, जो जहां भी है उसको वहीं छोड़ दें, अपने लिए एक नाम रख लें कि मैं क्या हूँ, मुसलमान हूँ। फिर क्या होगा, नेकी और बदी बराबर नहीं होती, भलाई को भलाई से दफ़े करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। इसके आगे एक जुमला लिखवाती हूँ, आप भी लिख लें, दुश्मनों को दोस्त बनाने वाला नुस्खा। लोग कहते हैं किल विद काइंडनेस, मैं कहती हूँ विन विद काइंडनेस। ऐसा ताल्लुक रखिए हर दीनदार से कि उसका दिल मोह ले। हक नहीं छोड़ना, लेकिन बदतमीजी नहीं करनी। आज जो मिंबरों पर खड़े होकर दूसरे मसलकों के बारे में गलत बातें बोल रहे होते हैं, वो उनको बोलने दीजिए, आपकी मेरी ये औकात ही नहीं है कि हम किसी मसलक या किसी जमात या किसी दीन वाले को बुरा कहें। ये तो वही बात है, छोटा मुंह बड़ी बात। सब्र कीजिए, आज उम्मत मुस्लिमा अगर सब्र कर जाए ना एक दूसरे की बातों पे, तो इस्लाम के पौधे पे बहार आ जाए। हाँ है बड़ा मुश्किल, इसलिए कहा, और ये बात इन्हें नसीब होती है जो सब्र करें, क्या बुराई के जवाब को भलाई से देना, और इसे सिवाय बड़े नसीबे वालों के कोई नहीं पा सकता। और अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह तलब कीजिए, यकीनन वो बहुत ही सुनने वाला और जानने वाला है। और दिन और रात और सूरज चांद भी इसकी निशानियों में से हैं, यानी वो भी मुस्लिम है, तुम भी मुस्लिम बनो। तुम सूरज को सजदा ना करो ना चांद को, बल्कि सजदा इस अल्लाह के लिए करो जिसने सब को पैदा किया है। अगर तुम्हें इसी की इबादत करनी है तो फिर भी अगर ये किबर और गरूर करें तो वो फरिश्ते जो आपके रब के नज़दीक हैं वो तो रात दिन इसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं और किसी वक्त भी नहीं उकताते। आइए हम भी कर लें। सुबहान अल्लाह ही व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। और इस अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि तू जमीन को दबी दबाई देखता है, फिर जब हम इस पर मी बरसाते हैं तो वही तरोताजा होकर उभरने लगती है। जिसने इसे जिंदा किया वही यकीनी तौर पर मुर्दों को भी जिंदा करने वाला है। बेशक वो हर हर चीज पर कादिर है। बेशक जो लोग हमारी आयतों में कजरवी करते हैं वो कुछ हमसे मखफी नहीं यानी छुपा हुआ नहीं। बतलाओ तो जो आँख में डाला जाए वो अच्छा है? नहीं अच्छा, ऑफ कोर्स नहीं। या वो जो अमन अमान के साथ क़यामत के दिन आए? तो जो चाहो करते चले जाओ, वो तुम्हारा सब किया कराया देख रहा है। जिन लोगों ने अपने पास कुरान पहुंच जाने के बावजूद इससे कुफर किया वो भी हमसे पोशीदा नहीं। ये बड़ी बावकत किताब है जो आपके मेरे हाथ में है, जिसके बस बातिल फटक भी नहीं सकता, ना इसके आगे से और ना इसके पीछे से। ये है नाजिल करता हिकमतों वाले खूबियों वाले अल्लाह की तरफ से। आपसे वही कहा जाता है जो आपसे पहले के रसूलों से भी कहा गया। यकीनन आपका रब मुआफी वाला और दर्दनाक अजाब वाला है। दोनों खूबियां एक्सट्रीम पे अपोजिट खूबियां। और अगर हम इसे अजमी जुबान का कुरान बनाते तो कहते कि इसकी आयतें साफ साफ बयान क्यों नहीं की गई? ये क्या कि अजमी किताब और आप रसूल अरबी? आप कह दीजिए कि ये तो ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते इनके कानों में तो बहरापन और बोझ है और इन पर सुंधापन है। ये वो लोग हैं जो किसी बहुत दूर दराज की जगह से पुकारे जाते हैं। ये आयत 44 तकाजा करती है इस बात का कि हम अपनी जुबान में कुरान को समझें, क्योंकि अरबों में उतरा तो अरबी में था। अगर अल्लाह के नबी अमेरिका में होते तो कुरान इंग्लिश में आता, नॉर्वे में होते तो नॉर्वेजियन में आ जाता। जुबानें तो सारी अल्लाह की हैं। तो फेथ इन एक्शन दो आयतें हैं इसमें ईमान से मुतल्लिक, फुसिलत 40। जैसे दुनिया बगैर मेहनत के नहीं मिली, ऐसे ही जन्नत भी बगैर मेहनत के नहीं मिलेगी। उसके लिए उतनी कोशिश कीजिए जितना वहां रहना है, इसके लिए इतनी कोशिश कीजिए जितना यहाँ रहना है। फुसिलत 44 कुरान मोमिन के हर रूहानी मरज का इलाज है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और सब कुछ। फिर इत्फा बिल्लती या अफसन आयत 34 में है। करते हैं नियत लोगों की बुराइयों के जवाब में वन साइडेड उनके साथ अच्छा मामला कर लीजिए। फेथ इन एक्शन खुद भी नेक अमल करना है और दूसरों को भी भलाई की तरफ बुलाना है। किसी की सख्त कलामी को बर्दाश्त करते हुए अच्छा जवाब देना है। कुरान की आयात की मनपसंद तावीलात नहीं करनी। और अब आखिरी दो आयतें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई की जरा इस मोहब्बत को महसूस कीजिएगा। वलकद आतैना मूसल किताब, यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी, बस इसमें भी इख्तलाफ किया गया। और अगर वो बात न होती जो आपके रब की तरफ से पहले ही मुकर्रर हो चुकी है तो इनके दरमियान कभी का फैसला हो चुका होता। ये लोग तो इसके बारे में सख्त बेचैन करने वाले शक में हैं। जो शख्स नेक अमल करे और अपने नफे के लिए, और जो बुरा करेगा इसका वबाल उसी पर है। आपका रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। तो क्या पता चला? फेथ इन एक्शन आज हमारे आमाल हमारी कल की मंजिल मुअय्यन करेंगे। इसलिए नेविगेटर में एड्रेस सोच के डालिए। गलत एड्रेस वाले गलत जगह पहुंच जाते हैं। तो हमें अपने आमाल की इसलाह करनी है, और आमाल की इसलाह हो नहीं सकती ईमान की शाखों को देखे बगैर। तो 47 नंबर शाह, हर गुनाह का इलाज तौबा है। पारे में भी तौबा, गाफिर इज़्ज़म बिकाबिले तौबी शदीदुल इक़ाब, और यहाँ भी तौबा। तौबा क्या है? दरअसल जाहिर और बातिन की पाकीज़गी का नाम है। बंदा गुनाह पर शर्मिंदा होता है और अपने रब से मग़फ़रत तलब करता है। अपने गुनाह से ऐसी तौबा करता है कि आइंदा ना करने का इरादा करता है। अगर कोई बशरी कमजोरी से कोई गुनाह दोबारा हो भी जाए तो फिर अपने रब से तौबा कर लेता है। तौबा के बाद अपनी इसलाह करने वाले की बख्शिश का वादा अल्लाह ने किया। अनाम 54, انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. اللہ آپ کو مجھے اپنی خامیوں کو خرابیوں کو بدل کر خوبیوں میں ڈالنے والا بنا دے. اور اس پہ حدیث جو آپ نے کئی بار سنی ہوگی, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے آدم کے بیٹے, جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے, میں تم کو معاف کرتا رہوں گا جو گناہ بھی تم نے کیے ہوں گے, اور مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ تم نے کتنے گناہ کیے. اے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں, پھر تم مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. اے آدم کے بیٹے, اگر تم زمین کے برابر گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرو, لیکن جب تیری مجھ سے ملاقات ہو تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو, تو میں تیرے پاس ان گناہوں کے برابر بخشش لے کر آؤں گا. ہے نا پورے پارے کا خلاصہ. اللہ اکبر, کیا فائدے ہیں توبہ کے. توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے, وہ کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ سے خوشخبریاں پاتے ہیں. اور 48 نمبر کی شاخ قربانی اور عقیقہ ہے. اللہ کی رضا کی خاطر کیا جانے والا ہر عمل قربانی ہے. ایک حدیث میں الصلاۃ قربانیۃ لکل مومن بھی کہا گیا. اسی طرح اللہ کی خاطر سوم و صلاۃ, صدقہ و خیرات, جانور کا ذبیحہ, نذر و نیاز, یا حتیٰ کہ اپنی من پسند چیز کو قربان کرنا قربانی کہلاتا ہے. سورت حج آیت 34 میں ہم پڑھ چکے کہ ولکل امت جعلنا منسکا, ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے, تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو ان کو بخشے ہیں. اللہ ہمیں بھی قربانیاں کرنے والا بنا دے. اور حدیث ہے اس پہ اللہ کے نبی کی, عید قربان کے دن کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں. یاد رکھو, قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں, بالوں اور کھروں سمیت آئے گا, اور خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے. اس لیے قربانیاں خوشی خوشی کرو. دعا مانگ لیجئے. اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اور آج کا شعر, شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, پر دم ہے اگر تو, تو نہیں خطرہ افتاد. شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, یہ کیا جی؟ استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ, پر دم ہے اگر تو, تو نہیں خطرہ افتاد. جب تک آپ کو کسی کام کا کرنے کا شوق ہے, دم خم ہے, تو مشکلات کی فکر نہ کریں. یہ کس کے لیے؟ آپ اور میرے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کبھی نہ گھبرائیں, کوئی مشکل نہیں آتی, جس کے رستے میں آتی ہے وہی تھامتا ہے انشاءاللہ.